अब देखिए कि नायात में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की मोहब्बत इंसानों के दिल में डाली, ये फितरी है। अगर कोई दीन के नाम पर इन चीज़ों की मोहब्बत को दिल से निकालने का मुतालबा करे तो ये गैर फितरी मुतालबा होगा। जो लोग ऐसा दीन लोगों के सामने पेश करते हैं, फिर लोग इन चीज़ों को तो नहीं छोड़ पाते लेकिन उस दीन को छोड़ देते हैं। आज के दौर में जो लोग दीन से दूर हैं या उनको किताब का सीखना सिखाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, गो किसकी और भी बहुत सारी वजूहात है जो इसी आयत में, लेकिन एक वजह यह भी है कि हम दीन सिखाने वालों ने दीन को रूखा फीका खुश करके पेश किया, और दीन जो है वो घर के अंदर के दीन और घर के बाहर के दीन में हम फ़र्क नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि दिलों में चूंकि ये मोहब्बत होती है, अल्लाह के नबी के सहाबा के दिल में भी ये मोहब्बत थी, लेकिन आपने इस तरीके से उनकी तरबियत की, इस तरह चैनलाइज किया कि उस मोहब्बत का रुख आगे चला गया। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इन चीज़ों की मोहब्बत दिल से निकाल दें, लेकिन ये चाहता है कि इसको आगे ट्रांसफ़र कर दें। इसीलिए अब अगली कुछ बात है, हम आयत 17 तक इकट्ठा पढ़ के फिर एंड पे खुलासा करेंगे पूरी बात का, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इंसान की पसंद की चीज़ों का तذکرہ करने के बाद अब इंसान की तवज्जो आगे की तरफ दिलाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में रखा कि कुल, आप कह दीजिए, अउनब्बियुकुम, क्या मैं बताऊँ तुमको, बिखैर मिन ज़ालिकुम, इससे भी बेहतर, यानी इन छह चीज़ों से बेहतर चीज़ बताऊँ। ऐसे लगता है कि जैसे किसी को कोई डील बताई जा रही है, कोई किसी कारोबार में मसरूफ़ था, वो सोचता है कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन कोई एक और शख्स आके कहता है कि तुम्हें इससे भी अच्छी डील बताऊं, इससे भी अच्छी चीज़ बताऊं। बिल्कुल वही अंदाज़ है कि इंसान को पूरी तरह बेदार कर दिया, शऊर को बेदार करने के लिए भी ये कुल का लफ्ज़ आता है कि इंसान सोचने लग जाए कि अब इसके आगे कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो कहा क्या है वो चीज़, हर एक के लिए नहीं, ये नहीं बताया क्या चीज़ है, शर्त पहले रख दी कि ये दुनिया की चीज़ें तो हर एक के लिए हैं, लिन्नास, कुछ करो ना करो, नमाज़ पढ़ो ना पढ़ो, अल्लाह को मानो ना मानो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन जो अच्छी डील तुम्हें बताई जा रही है, जो बड़ी प्यारी चीज़ें मिलनी है, उसके लिए एक शर्त है। इसलिए चीज़ों के तذکرے के बाद उसकी तफसीलात बताने से पहले कह दिया कि लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम, तकवा की शर्त है। अब जो चीज़ें बताई जाएंगी वो मिलेंगी सिर्फ मुत्तकियों को, जो तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जो अल्लाह की मोहब्बत में जिएंगे और अल्लाह की नाराज़गी के डर से खौफज़दा होंगे। और तकवा वही है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हों ने बताया कि जब किसी खारदार जो कांटों वाली जगह में से कोई गुज़रे तो कैसे गुज़रेगा, दामन को बचाकर, कपड़ों को समेट कर, इधर से कांटा न लग जाए, उधर से कांटा न लग जाए। इसी तरह इस दुनिया की मोहब्बतों से तुम इस तरह गुजरोगे कि कोई मोहब्बत तुम्हारे पाँव ना पकड़ ले और तुम्हारे दीन से ज़्यादा तुम्हें प्यारी ना हो जाए, और तुम इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से गुजरोगे कि कल आगे मेरा रब मेरे लिए जन्नतों को तैयार करके मेरा मुंतज़िर है। लिहाजा तकवा वालों के लिए क्या है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदी नफीहा, हमेशा रहने वाले उसमें, व अज़्वाजुम मुतहरतुन, और पाकीज़ा जोड़े होंगे, साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी, व रिद्वानुम मिन अल्लाह, और सबसे बढ़ के अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब जानता है अपने बंदों को। इस आयत में तो सिर्फ ये कह दिया ना कि ये तीन चीज़ें तकवा वालों को मिलेंगी, अगली आयत में तकवा वालों की मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, मज़ीद तफसील है, कौन होते हैं तकवा वाले, अल्लज़ीना। अगर आप इसका रब पिछली आयत से जोड़ना चाहें ना, तो आप यूँ कर सकते हैं, लिल्लज़ीना तक़ौ अल्लज़ीना यकूलूना, जो बीच की बात थी ना वो तो बताया गया मिलेगा क्या, यहाँ जवाब दिया जा रहा है कि तकवा वाले कौन होते हैं, अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना, वो लोग जो कहते हैं कि हमारे रब, इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान लाए। अपने ईमान को वसीला बना रहे हैं, वास्ता दे रहे हैं अपने ईमान का। और इंसान अपने नेक अमाल का वसीला या वास्ता दे सकता है। क्या कहते हैं? हम ईमान ले आए, हमने पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया, हम तुझे मान गए, हमें पता है कि तू ही सब कुछ देने और लेने वाला है। ये मानने के बावजूद भी हमसे कुछ गुनाह हुए तो फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो माफ़ कर दे हमारे गुनाहों को, बख्श दे हमारी ख़ताओं को। वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। तीन बातें हैं इस आयत में, ईमान का दावा, फिर गुनाहों की माफ़ी और अज़ाब नार से बचने की दुआ। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسخار, صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اللہ کا حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور سحریوں کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے, یہ ہیں شرائط اس جنت کو پانے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت خوبصورت سا ماڈل بنا کے رکھ دے جس میں ہر چیز تھوڑی تھوڑی دکھا دی جائے جو اصل گھر میں ہوگی۔ یہ ہے دنیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ماڈل ہے۔ آپ کسی بلڈر کے پاس جاتے ہیں نا, فلیٹ بک کرواتے ہیں, کوئی ہاؤس لینا ہے, تو آپ کو وہ کیج کے اندر یا شیشے کے اندر لگے ہوئے ایک ماڈل کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھیے ایسا ہوگا۔ وہ ہر وہی چیز ہوتی ہے جو کل ہوگی, لیکن چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اب آپ اس میں اپنی انگلی بھی ڈالنا چاہے تو آپ نہیں ڈال سکتے, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ بنے گا تو ایسا ہوگا۔ یہ دنیا آخرت کا منیچر ہے, چھوٹا سا ماڈل ہے, ایک سیمپل ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی ڈال دی اور اس کے لیے اتنی محبت دلوں میں ڈال دی تاکہ اندازہ کر لو کہ کل اللہ نے تمہارے لیے جو تیار کیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آخرت میں یا جنت میں جو ہمیں ملنے والا ہے نا, اس کو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا۔ لیکن سمجھنے کے لیے, اپنے اس دنیا کے حساب سے دیکھنے کے لیے, ہم اس جنت کی باتیں جب سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, احادیث میں اس کے تذکرے پڑھتے ہیں, تو دل میں رغبت آتی ہے کہ اللہ واقعی یہ جنت مجھے مل سکتی ہے؟ کہا ملے گی, لیکن اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ پچھلی آیت میں 6 چیزیں تھیں, لیکن اس آیت میں جنت کے ناطے سے صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, نعمتوں والی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے, ایک یہ چیز دے دی۔ دوسری چیز دے دی وازواج مطہرہ, نیک بیویاں, گھر بار چیزیں۔ اور تیسری دے دی رضوان من اللہ۔ جنت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا, بیویوں کا کر دیا ازواج مطہرہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو اولاد کی کشش ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہے جو شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ انسان اولاد کی محبت اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اس کے کاموں میں مدد کریں گی, اس کے بڑھاپے میں ساتھ دیں گی, اس کا نام زندہ رہے گا۔ تو آخرت میں تو کسی کو ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, نہ وہ فنا ہوگا, نہ بیمار ہوگا, نہ اس کو کسی ولی اور وارث کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی, اور جس کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں خواہش ہی نہیں ڈالیں گے۔ ہاں, اگر کسی کے دل میں خواہش آئے گی بھی نا, تو صحیح روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان چاہے گا کہ اللہ میری اولاد ہو, اس کی خواہش کرنے کی دیر ہے نا, اس کی بیوی پریگننٹ ہوگی, حمل ٹھہرے گا, بچے کی ولادت ہوگی, اور اس کے سامنے بچہ دیکھتے ہی بڑا ہو جائے گا۔ یہ صحیح روایت میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تسکین کر دے گا۔ لیکن جو دنیا سے اولاد کا حصول ہے نا, وہ جنت میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز دیکھیے کہ جنت کے تذکرے میں سونے چاندی کا ذکر نہیں ہوا جو دنیا میں تھا۔ کیوں؟ इसलिए कि दुनिया में सोना चांदी क्यों होता है? ताकि इंसान उसके बदले में दुनिया का सामान खरीदे, ज़रूरत हासिल करे, और आखिरत में किसी किस्म की खरीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं होगी। और वैसे भी देखा जाए तो पूरी जन्नतें ही सोने की बनी होंगी। सही रिवायात में आता है कि दो जन्नतें जो सोने की हैं, कुछ चांदी की हैं, हर चीज़ सोने की है। एक में हर चीज़ चांदी की है और एक में हर चीज़ मोती की बनी हुई है, लुलू पर्ल्स की। और 97 यानी 97 दर्जे जो हैं वो तो कोई नफ्स जानता ही नहीं कि वो कैसी होगी। तो जहाँ पूरी जन्नत सोने की, वहाँ थोड़े से सोने की अहमियत क्या रहेगी? और जब कोई चीज़ बहुत कसरत से होती है ना, तो फिर उसकी अहमियत ही नहीं होती। फिर आप देखिए कि जन्नत के अंदर घोड़ों का तذکرہ नहीं है। क्यों? कि दुनिया में घोड़े अमूमन सवारी के लिए आते हैं, तवील मुसाफत जो होती है उसको तय किया जाता है, तो जन्नत में ऐसी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये एक सही रिवायत में आता है कि जन्नत वालों को जुमे के दिन उम्दा घोड़े सवारी के लिए पेश किए जाएंगे, जिन पर सवार होकर जन्नत वाले अपने अजीज़ो अकारिब और अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए जाएंगे। यानी ये ज़रूरत के लिए नहीं होंगे, ये प्रोटोकॉल के लिए होंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे लोग हर रोज़ आम गाड़ियों में बैठते हैं, तो कोई बड़ा ख़ास मौका आता है ना, तो वो लेमोज़िन मंगा लेते हैं कि चलो आज ज़रा लेट के जाते हैं। तो अल्लाह ताला जन्नतियों को घोड़े देगा, लेकिन वो शान के लिए होंगे, मोहब्बत के लिए होंगे। फिर इसी तरह मवेशी का और खेतियों का तस्करा था पीछे। जन्नत में अल्लाह ताला ने ये नहीं दी। क्यों? कि खेती के तसव्वुर के साथ मेहनत आती है, साथ ही हल जोतना और बीज डालना, और जन्नत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। अल्लाह ताला हर चीज़ ऐसी लगा के दे देगा, इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तबरानी की एक बड़ी प्यारी रिवायत है कि एक शख्स होगा जन्नतियों में से, वो तमन्ना करेगा कि अल्लाह मेरी खेती हो और मैं उसमें अनाज डालूं। तो अल्लाह ताला पूछेगा, क्या मैंने तुझे इससे बेनियाज नहीं कर दिया कि तुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं? तो कहेगा, हाँ लेकिन मुझे दुनिया में पसंद था तो मैं चाहूँगा। तो कहा कि कोई बात नहीं। उसके देखते ही देखते वो सारे औजार और सारे टूल्स रखे होंगे, सब चीज़ें होंगी, और खेती लगेगी, वो पूरी बड़ी होगी, फिर कट के चंद मिनट में उसके सामने आ जाएगा। तो जब सहाबा कराम ने ये हदीस सुनी तो आप कहने लगे कि अल्लाह के नबी, ये ख्वाहिश करने वाला ज़रूर कोई अंसारी शख्स होगा, क्योंकि जो अंसार थे ना, उनको ज़मीन का बहुत शौक़ होता है। अब देखिए, जो चीज़ इंसान के खून में रची होती है ना, वो ख्वाहिश नहीं निकलती। मैंने देखा लोग नॉर्वे में भी खेती बाड़ी करते, वो यहाँ आके भी बीज डालते हैं, वो यहाँ आके भी तंदूर पर रोटियाँ पकाते हैं। ये ख्वाहिश है ना, इंसान को मज़ा आता है। कुछ चीज़ें बंदा ज़रूरत के लिए करता है, कुछ आदत के लिए करता है। तो लहुम फ़ी हमा यश्तहून, बस एक बात याद रखें, वफ़ी हमा तश्तहिल अनफुस, उसमें हर वो चीज़ होगी जिसकी कोई ख्वाहिश करेगा। ये सब कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन व रिदवान मिनल्लाह, अल्लाह की रजामंदी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सारी ज़िंदगी एक ईमान वाला इसी की तलब करता है, इसी की तड़प रखता है कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। और जिनको दुनिया में परवाह नहीं, उनको ये नेमत को बड़ी लगेगी नहीं। लेकिन रिवायत में आता है, अबू सईद अल-खुदरी की रिवायत है, सही मुस्लिम में है, कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह सुभान व तआला उनको पुकारेंगे, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यकूलु लिअहलिल जन्ना या अहलिल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नतियों को कहेंगे, ए जन्नत वालो, फ़यकूलूना, वो कहेंगे, लब्बैक रब्बना व सादैक, हम हाजिर हैं हमारे रब और हम इसमें खुश हैं, वल खैरु फी यदैक, अल्लाह सारी खैर तेरे हाथ में। सवाल जवाब होंगे, सामने बैठ के मुकालमा हो रहा है, अल्लाह ताला हाल पूछ रहे हैं, जन्नती अपना हाल बताएंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, हल रजी तुम, क्या तुम मुझसे खुश हो? यानी जो मैंने तुमसे वादे किए थे वो दे दिए, जो तुमने मेहनतें की थी दुनिया में मेरे नाम पे, क्या आज तुम्हें उसका बदला मिल गया? फ़यकूलूना वमा लना ला नर्दा, कहेंगे हमें और क्या चाहिए, हम क्यों ना खुश हों? या रब्बी, ए हमारे रब, वक़द आतैतना मा लम तुती अहदम मिन खल्किक, तूने हमें वो सब कुछ दिया जो तूने अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दिया। यानी कोई गुंजाइश ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई शौहर पूरा घर सजा के नई नवेली दुल्हन से कहे कि देखो क्या तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, तुम खुश हो, कुछ और चाहिए? तो फिर औरत कहती कि और क्या चाहिए, यहाँ तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला खूबसूरत जन्नत सजा के बैठा हुआ ईमान वालों के लिए, और उनको दिखा के पूछेगा, क्या खुश हो, कुछ और चाहिए? कहेंगे और कुछ चाहिए क्या, क्या होगा इससे बढ़ के, अब और क्या मिले? तो फिर अल्लाह सुबहान तआला फरमाएंगे, अला उतीकुम अफदलु मिन जालिक, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना दूँ? अफदल मिन जालिक यानी ये जो सब कुछ तुम्हें दे दिया, जन्नत की नहरें, खाने पीने कपड़े लिबास, क्या इससे भी अच्छा दूँ? फ़याखुलू न या रब्बी व अय्यु शैइन अफदलु मिन जालिक, वो कहेंगे हमारे रब कौन सी चीज़ इससे अच्छी होगी, यानी इससे भी अच्छा कुछ होगा? तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, फ़याखुलु अहिल्लु अलैकुम रिद्वानी फला असखतु अलैकुम बादहु अबदा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें अपनी रज़ामंदी से नवाजूंगा। ये बात सुन के जन्नती इतने खुश होंगे कि उनको लगेगा कि जन्नत की हर नेमत हेच है और ये नेमत बड़ी है। देखिए दुनिया में कोई आपके सामने अपना घर खोल दे, सारी नेमतें हों एक लड़की के पास, सोने चांदी में लदी हो, लेकिन उसका शौहर उससे बात ना करे, उससे नाराज़ हो, उखड़ा उखड़ा रहे, वो खाने वो जेवर वो कपड़े वो घर अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता। असल बात जो है ना वो ये है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, ये हमारी नमाज़ें ये रोज़े ये सब कुछ तो इस बात की तैयारी है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी होगा फिर जन्नत देगा, लेकिन इसके लिए दुनिया में कोशिश करनी है। इसके लिए अल्लाह ताला ने शरायत लगा दी कि सब्र करना पड़ेगा। तकवा की ज़िंदगी क्या होती है? सब्र वाली ज़िंदगी का तकाजा करती है, जिसमें एक इंसान अपने आप को रोकता है। यहाँ सब्र जो है ना कनात के मानों में है, कि इसी रोज़ और शब में खो के न रह जा, कि तेरे ज़मानों मकां और भी हैं। हम इस दुनिया में आते हैं ना तो यहीं खो जाते हैं, ऐसे जैसे किसी को भेजा जाए जाओ वो देखो वहाँ एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है ऐसा होगा घर, तो वो जाके कहे नहीं बस मुझे ये मॉडल ही दे दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो बेवकूफ़ी है ना। जब किसी को कोई बड़ी चीज़ देना चाहे तो कोई छोटी पे राज़ी हो तो हम कहते हैं बेवकूफ़ी हो, कोई बड़ी लेते, उसने तो तुम्हें इससे बड़ी देनी थी। जब अल्लाह ताला देने पे आता है ना तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा देता है, और दुनिया भी अल्लाह ही देगा, आखिरत भी उसने ही देनी है। जो आखिरत मांगेगा ना उसको दुनिया वैसे ही मिल जाएगी मुफ्त में। मसलन हम सब इस हॉल में बैठे हैं, आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि आप इस करीब वाले दरवाजे में से बाहर जाना चाहती हैं या बाहर के दरवाजे में से जाना चाहती हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहें कि हम बस इस दरवाजे से बाहर चले जाएं तो ठीक है, और कुछ कहेंगे कि नहीं हमें बाहर मेन डोर जो उससे गुजारना है। अब जिन्होंने ये ख्वाहिश की है ना कि उनको इस दरवाजे से बाहर निकाला जाए, कहा जाएगा उठिए चलिए आप यहाँ से उठे जाके रिसेप्शन पे खड़े हो जाए, ख्वाहिश पूरी ख़त्म, जो मांगा मिल गया। अब बारी आती है उनकी जिन्होंने बाहर के दरवाजे से निकलने की ख्वाहिश की थी, उनको आप कैसे यहाँ से गुजारेंगे? पहले बीच में ये दरवाज़ा आएगा कि नहीं? वो यहाँ से गुजरेंगे लेकिन यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से भी गुजरेंगे और बाहर भी खुशी खुशी निकल जाएंगे, फ़ायदे में कौन रहे? ये बात भले ना, बस ये दुनिया जो है ना ये करीब का दरवाज़ा है। जब हम कहते हैं ना रब बनाती ना फिर दुनिया, रब बनाती ना फिर दुनिया, रब बनाती ना फिर दुनिया, तो अल्लाह कहते ले लो पकड़ो मिल गए, ये करीब के दरवाजे बाहर खड़े। अब वो रिसेप्शन इस कमरे से कितनी छोटी है, यहाँ तो फिर भी आप खुल के कुछ बैठे होंगे, वहाँ तो आपका सांस घुटेगा। अगर आप में से 8-10 लोगों को भी वहाँ जमा कर दिया जाए तो आप कहते हाय मैंने क्या किया, समझे कि वो कब्र है। सूरह ताहा में भी आता है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, मनारदान ज़िक्री फ़ाइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरी नसीहत से मेरी याद से मुंह फेरेगा उसकी ज़िंदगी तंग कर दूंगा, घुटन का शिकार हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार होगी। अब वो जो दुनिया मांगने वाले थे ना वो रिसेप्शन में स्टक हुए हैं, पाँव पे पाँव आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करें, आपने कहा ही ये था कि हमें यहाँ ले जाए। लेकिन वो जो बाहर के दरवाजे से जाने वाले हैं ना ये आखरत के तलबगार हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन, ये जन्नत के राहें हैं। जब आप आखरत मांगते हैं ना तो दुनिया आपके रास्ते में आ जाती है, जलील होके आती है। अल्लाह के नबी की हदीस का खुलासा है कि जो बंदा दुनिया के पीछे भागता है ना तो दुनिया उससे आगे भागती है, आगे भागती है, हाथ में नहीं आती, मिलेगी उतनी जितनी नसीब में है। ऐसे जैसे आप में से कभी किसी ने तितली पकड़ी हो बटरफ्लाई, आप उसको पकड़ना चाहते हैं ना, वो और आगे भागती है, आप जिधर जाते हैं मुड़ जाती है, और आप कहते बस अब मुझे नहीं पकड़नी, मैं नहीं पकड़ सकती, आराम से आके आप बैठेंगे ना, वो ही उड़ती हुई खुद ब खुद आके आपके हाथ में बैठ जाएगी। ये है ये दुनिया, जितना हम दुनिया की मोहब्बत में भागते हैं ना, चले हलाल और हराम का फर्क ना भी हो, हलाल जगह से भी लेते हैं ना तो हाँफ तो जाते ही हैं, अपना आराम भी आराम नहीं लगता, नींद नींद नहीं, बच्चे बच्चे नहीं, घर घर नहीं, खुशी खुशी नहीं, क्या है कि सामान्य राहत जमा हो जाए तईशात। लेकिन याद रखिए कि सामान्य राहत मिलना और बात है, और राहत मिलना और बात है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लग्जरियस घर बना लें तो आप फिर पीसफुल लाइफ भी गुजारें, उसके लिए इंसान को अपने आप को आगे दिखाना पड़ता है, आगे देखो, इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी निगाहें आखिरत पे लगा दो, शिफ्ट कर दें अपनी ख्वाहिशात को, ज़रूरत का यहाँ ले लें, एक्स्ट्रा वहाँ करेंगे, जैसे आप कई मौके पे करते होंगे ना कि आप दुनिया में जो भी काम, यहाँ कहीं भी आप वक्ती तौर पे आते हैं तो आप ज़रूरत की चीज़ें रख लेते हैं और बाकी कहते हैं मेरे असली ठिकाने पे पहुँचा दो, जैसे ट्रांजिट पैसेंजर हैं या कोई और, बहुत सारी मिसालें आपके साथ कई दफ़ा शेयर की हैं। इस दुनिया में ऐसे रहें कि पानी कश्ती के बाहर रहे, दिल की कश्ती को ना डुबोए, जब दिल में मोहब्बत आती है ना माल की, फिर बंदा रुसवा हो जाता है, आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, जो करें, लेकिन आपको इससे मोहब्बत ना हो, जहाँ ज़रूरत पड़ी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदे को दे दो, ले लो, कर लो। जब बंदा हिरस का शिकार होता है ना तो बिल आखिर फिर वो अपनी आखिरत को दाव पे लगाता है। तो बात का खुलासा क्या कि दुनिया लेना कोई गुनाह नहीं, लेकिन आखिरत की कीमत पे लेना बहुत बड़ी महरूमी है। जो लोग दुनिया को पा रहे हैं ना, चेक करें इसकी कीमत क्या दे रहा हूँ, आपने समझा था कि ये सस्ती ख़रीद रहा हूँ, लेकिन अगर आखिरत चलेगी तो बहुत मुश्किल होगी, और ये मज़मून आगे बहुत जगह पढ़ेंगे, लेकिन इंसान को अपनी निगाहें आखिरत पे लगानी चाहिए, अगर इसके बग़ैर दुनिया से चले गए तो याद रखिए कि फिर हम इसी में खो जाएंगे। मंजिल पे जिनकी निगाहें होती हैं ना, वो रास्ते के खूबसूरत मंज़र देखते तो हैं, लेकिन गाड़ी रोक के खड़े नहीं हो जाते, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कहीं पहुंचना है, बस जो रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे दिखता है ना। और आप देखिए कि अस्साबरीना वस्सादिकीन, सच्चे कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक करने वाले, कौल और अमल के सच्चे, अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत दिल में डाली लेकिन उसमें खो के नहीं रह जाते। और फिर वल कानतीन, कनूत भी है। दुनिया की मोहब्बत अमूमन इंसान को गरूर में मुब्तला कर देती है, तकब्बुर आने लगता है, बड़ाई आने लगती है, अल्लाह ताला कहते हैं वो कानतीन होते हैं, आजिज़ होते हैं, और दवाम भी होता है, कंटिन्यूटी, मुसलसल, ये नहीं कि एक दिन बहुत शौक आया तो खूब नमाज़ें पढ़ ली और दूसरे दिन फ़र्ज़ भी छोड़ दी, एक रात जागे तो बाकी रातों में फ़र्ज़ भी छोड़ दी, और फिर दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा आती है ना तो दिल घुटता है, लेकिन जन्नत के राही वल मुनफिकीन, खर्च करने वाले खुले दिल के होते हैं, अपनी ज़रूरत के ज़ायद जो है वो उनसे शेयर करते हैं जिनके पास नहीं है, और सारे काम करके वल मुस्तगफिरी नबिल असखार, सहरियों के वक्त अस्तगफार करते हैं, क्यों, इसलिए कि इस वक्त अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे नज़ूल फरमाता है और पुकारें लगाता है, हल मिम मुस्तगफिर, है कोई जो बख्शिश तलब करे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, कोई है शिफा मांगने वाला, सेहत मांगने वाला, आए मुझसे शिफा मांगे, मैं उसको देता हूँ। कितना रोते हैं ना, हाय यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ़ है, उधर डॉक्टर पे जाना है, इसको करना है, फलां मेरी मदद करे, एक रात ज़रा सहरी में जाग के उस रब को तो सुना दे कि अल्लाह बड़े दर्द हैं ठीक कर दे, बड़ी बीमारियाँ ठीक कर दे, लेकिन उस वक़्त तो हमारी आँख लगती है, यानी जिस दाता से मांग के सेहत भी मिलनी है उस वक़्त हम सोए होते हैं, और जिन लोगों ने कुछ नहीं देना सिवाय हमारी तसल्लियाँ और दिलासों के, उनको सारा दिन कहते हैं कि हम बीमार हैं। कभी आपने देखा जितना हम डॉक्टरों के पीछे भागते हैं सेहत के लिए, या अपने चेकअप्स के सिलसिले में, या बीमारियों को दूर करने के लिए, कितना मुश्किल मामला है। अल्लाह ताला कभी किसी को डॉक्टरों के हाथ ना डाले, और कोई यानी हॉस्पिटल्स और इस तरह की चक्रों में ना पड़े, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता है कितनी अजियत होती है, सारा सारा दिन लाइनों में लोग लगते हैं और परेशान होते हैं, ये मुश्किल है या अल्लाह से सेहत मांगना मुश्किल है। लेकिन शैतान कितना धोखा देता है इंसान को, और इंसान वाकई अपने आप को अल्लाह से दूर करता है, वो सोचता है कि नहीं मैं बाहर बाहर से सेहत लेके आ जाऊंगा। और आप देखिए सब कुछ करके भी फिर बख्शीश ही मांग रहे हैं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ाई नहीं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमें दी है ना, वो चाहता है कि तुम मेरे फरमाबरदार रहो। बस आप देखिए एक माँ है ना, अपने बच्चे को एक बड़ा खूबसूरत खिलौना दिलाती है, क्या सोचती है कि ये खिलौना पा के ये मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे हाथ चूमेगा, मेरी बात मानेगा कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है मुझे खिलौने देती है या मेरी पसंद की चीज़ लाई है। लेकिन आप ज़रा उस बच्चे को क्या कहेंगे कि जो गिफ्ट लेके उसको खोलने और उससे खेलने में इतना मसरूफ़ हो जाए कि आप उसको पुकारें कि आओ खाना खा लो, तो वो उसमें खेल रहा है, आप कह रहे हैं सो जाओ तो वो उसमें खेल रहा है। यानी उसी खिलौने को पाकर वो आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप गुस्से में कहेंगे मैंने इसलिए थोड़ी दिया था, आप छीन लेंगे उसे, उठा के अलमारी में बंद करेंगे, जाओ भाग जाओ मैं नहीं दे रही। अगर देखा जाए तो क्या यही बचकाना सोच हमारी नहीं है? अल्लाह ने ये दुनिया दी, अल्लाह ने ये सब कुछ दिया, इसलिए दिया कि तुम और मुझसे प्यार करो, इस दुनिया में रहकर मुझको याद करो, यही है इम्तिहान। और हम इन्हीं खिलौनों को पाके अल्लाह को भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि अब कौन उसकी तरफ आए और कौन देखे। इसीलिए कहा कि लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है, कौन इन चीज़ों की तरफ रहता है। तो जब इन चीज़ों को समझेंगे ना, फिर ज़िंदगी का रंग बदल जाएगा। दुनिया तो अब देखिए जितनी मिल जाती है ना उतनी ही थोड़ी लगती है, कुछ ना हो और आप मुतमईन हो जाएं, ये आपकी खुशी का राज है। वरना एक चीज़ आएगी ना तो दूसरी आपको ख़राब लगने लगेगी, और इसी में फिर आगे से आगे चले जाएंगे। फिर बीवियों की बातें, क्या कुछ है इन आयतों में, तो ज़रूरत है इस बात की कि आखरत को मंजिल बना लें और दुनिया को ज़रूरत। जो लोग इस दुनिया को मंजिल बना लेते हैं ना, फिर वो आखरत में महरूम होंगे। ये नहीं कहा ये दुनिया बुरी है, बल्कि बी खैर मिन ज़ालिकुम, इससे बेहतर। इस्लाम दुनिया को गलत नहीं कहता, लेकिन ये चाहता है कि इससे अच्छी चीज़ लो। कभी आप लड़कियों को, यंग बच्चियों को शॉपिंग के लिए माँ के साथ जाता देखा करें, पहली दुकान पे खड़ी हो जाएंगी, ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। और अगर बाप ने घर से कोई जाते हुए 20-25 पकड़ाए होते ना, वो पहली दुकान पे लेने चाहेंगी, तो माँ उसको कहती है अरे छोड़ो आगे तो देखो, आगे तो देखो। और जब आप आगे देखते हैं तो आप कहते हैं हाय मैंने क्यों जल्दी की ले लिया, सारे पैसे तो शुरू में खर्च हो गए। कुछ ना समझ और जज्बाती लोग होते हैं ना, वो फौरन अपने सारे पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर बाकी बाजार में बस वो हसरत और अफसोस ही करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की पूंजी में जो नेकियां कर सकते थे ना, वो करने की बजाय अपने वक्त को इस दुनिया की चीज़ों में रख लेते हैं, कल उनको अफसोस होगा। अब देखिए ना, एक शख्स है उसके हाथ में दो मुट्ठियाँ, वो कहता है देखो इस मुट्ठी में मेरे पास हीरे हैं, डायमंड्स हैं, और इस मुट्ठी में कंकर हैं, क्या लोगे? आप सब क्या कहेंगे? आप राइट साइड लेंगे कि लेफ्ट लेंगे? आप डायमंड्स लेंगे ना। कोई ऐसा है जो डायमंड्स को छोड़ के कंकर ले ले? तो यहाँ तो हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं? कंकर क्या है? दुनिया। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अद्दुनिया मलऊनुन वमलऊनु मा फीहा, ये दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है ना, सब कुछ अल्लाह की रहमत से दूर है, लानतों में, यानी कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं। इल्ला मगर, मबतुगिया बिही वजहुल्लाही, मगर वो चीज़ें जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। और एक रिवायत में आता है कि आलिम, मुतालिम और अल्लाह का ज़िक्र, इन तीन चीज़ों के अलावा हर चीज़ जो है वो अल्लाह की रहमत से दूर है। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें इस चीज़ की समझ दे दे। एक होता है प्योर गोल्ड का जेवर, सच्चा सोना, और एक होता है आर्टिफिशियल सोने के ऊपर गोल्डन पानी चढ़ा हुआ। ये जो दुनिया है ना, जुजिन लिन्नास हुब्बु शहवात, ये आर्टिफिशियल के ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, और जन्नत जो है ना वो प्योर गोल्ड है। जो मिसालें समझ लें, ये चमक रही है, ये सुनहरी तो है दुनिया, ये गोल्डन तो है लेकिन गोल्ड नहीं है, ये लुक लाइक गोल्ड लेकिन इट्स नॉट गोल्ड। इसके लिए अगर असल चीज़ों को पाना है तो वहाँ जाना है। और अल्लाह ताला ये सिखा रहा है कि देखो इन चीज़ों में पढ़कर अपने मिशन को नहीं भूलना। जो जन्नत में जाने के तरीके متمنی ہوتے ہیں نا، جو خواہش رکھتے ہیں، وہ پھر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، خواہشات میں کھو کے وہاں نہیں رہتے. اور جہاں آپ کو کوئی چیز اچھی لگے گی نا، وہیں آپ کی آزمائش شروع ہو جائے گی. آزما لیں اگر آج گھر جا کے، یا اس کے بعد اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں نا کہ مجھے کیا پسند ہے، کتنا پسند ہے، اور میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں، تو بس پھر آپ اس کو ضرورت کا لے لیں، باقی سنبھال دیں. کہاں؟ اللہ کے پاس. ایک شخص تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا موت سے ڈر اتر جائے. تو عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جو آپ کی من پسند چیزیں ہیں نا، جو چیز آپ کو بہت پسند ہوتی ہے، وہ آگے بھیجنا شروع کر دیں اللہ کے راستے میں. اور جہاں انسان کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں اس کا دل بہت لگتا ہے. یہ سچ ہے نا؟ آپ کے گھر کا سامان جہاں پڑا ہو وہیں جاتے ہیں نا. آپ اپنے گھروں میں کیوں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ وہاں چیزیں بڑی؟ چاہے جا کے ان کو ٹھیک ہی کرتے رہیں، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ یہاں میرا سامان ہے. تو کہا جہاں چیزیں ہوں گی نا، وہاں آپ کا بھی جانے کو دل جائے گا. وہ لوگ جو آگے اپنا سامان بھیج رہے ہوتے ہیں نا، ابو بکر صدیق جیسے اور باقی عثمان غنی اور آج کے دور کے بھی الحمدللہ جو لوگ ان چیزوں میں، ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا. اور جو ادھر اتنی سجا لیتے ہیں نا دنیا، تو قبر اندھیری ہے، روشنی سے اندھیرے میں جانا بہت ڈر لگتا ہے. نتیجہ کیا آتا ہے؟ پھر وہ موت کے نام سے کہتے ہیں ہائے یہ بات نہ کرو، ڈپریشن ہوتا ہے. وہ ایک لیکچر ہے ہمارے پاس دعویٰ سی ڈی میں، اور میں مر گیا، آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. کچھ لوگ تو اس کا نام سن کے نا تو چھوڑ دیتے ہیں، ہائے یہ نہیں لینا. تو میں نے سوچا کہ آپ اس کو جب دوبارہ سیٹ کرائیں گے تو اس کا نام بدل دیں گے. ڈرتے ہیں لوگ، نہیں نہیں ابھی نہیں، یہ چاہیے، اس کو بند کر دو. حالانکہ اس کو نہ پکڑیں تو موت تو ہمیں کسی لمحے بھی پکڑ سکتی ہے. تو ضرورت ہے کہ موت سے ڈرنے کی بجائے اس جہان کو آباد کریں. کسی کے دو گھر ہوں، بلکہ یاد آ گیا واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا. کوئی ان کے گھر آیا تو دیکھا کہ کوئی سامان ہی نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بس جیسے مسافر ہوتے ہیں. کہا کہ ابو ذر آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے؟ کہتے ہے، وہ دوسرے گھر بھیجا ہوا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ ان کے دو گھر ہوں گے، ادھر نہیں رکھا ہوا تو وہاں رکھا ہوا ہے. کہا وہ گھر کدھر ہے آپ کا؟ تو کہا وہ اللہ کے پاس ہے، سامان سارا ادھر بھیج دیتا ہوں کہ جانا جو ادھر ہے تو جب بندہ جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا نا، تاکہ وہاں تیار ہو. آپ کو پتا کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ہمارے اعمال سے اس کو سجایا جاتا ہے. یا اس کو جنت کا ایک ٹکڑا ہم بنا رہے ہیں، یا جہنم کا. آپ جتنا بھی کرسٹل اپنے گھر میں لگا لیں، کسی کی چمک آپ کی قبر میں نہیں جائے گی. لیکن جو آپ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں گے، اور یہ سوچ کے کریں گے کہ اللہ مجھے وہاں روشنی کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی قبر میں روشنیاں بھی کرے گا. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس جنت کی طلب رکھنے والا، تڑپ رکھنے والا اور کوشش کرنے والا بنا دے. ہم دعا تو کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنہ، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک عمل نہیں ہوگا. اور وہی بات یاد رکھے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے دیکھی تھی، اللہ کی رحمت اور ہمارے عمل، یہ دونوں آپس میں ہک اپ ہوں گے، پھر جنت ملے گی.